संत साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि। मध्यकाल का संत साहित्य प्रधान रूप से धार्मिक साहित्य है, परंतु उसका धार्मिक रूप साधारण जनता के लिए लिखा गया है। इस विषय में तो किसी को मतभेद न होगा कि इस साहित्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की आलोचना की गई है। दीर्घ काल से प्रचलित धार्मिक विश्वासों, सामाजिक एवं वैयक्तिक आचरणों के मान तथा विभिन्न संप्रदायों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर या तो आक्रमण किया गया है या उनके संबंध में संदेह प्रकट किया गया है। यह विभिन्न संतों के उस तीव्र असंतोष का फल है जो उन्हें सामाजिक परिस्थितियों के कारण अनुभूत हो रहा था। जिस कवि या लेखक के पास सचमुच ही कुछ कहने की वस्तु होती है, उसके व्यक्तित्व का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह मालूम होगा कि समाज में प्रतिष्ठित रूढ़ियों में वह कुछ ऐसी त्रुटि देख रहा है जो उसे बुरी तरह से खल रही है। वह खलने वाली बात का विरोध करता है और उसके स्थान पर कुछ ऐसी बातों को प्रतिष्ठित करना चाहता है जो उसके मन की अनुकूल होती है। इसलिए जो भी महापुरुष कुछ कहने लायक बात कहता है, वह किसी न किसी रूप में सामाजिक परिस्थितियों से असंतुष्ट होता है और किसी न किसी बात का प्रचार करना चाहता है। वह जो कुछ कहना चाहता है उसकी उपादेयता क्या है, इस विषय में नाना मुनियों के नाना मत हैं। हम सभी इस प्रश्न पर नहीं आना चाहते। आगे इस पर विचार करने का भी हमें अवसर मिलेगा। अभी इतना जान रखना आवश्यक है कि लेखक जब देने लायक कुछ देता है तो उसके चित्त में कहीं न कहीं और किसी न किसी प्रकार की सामाजिक त्रुटि से उत्पन्न व्याकुलता अवश्य रहती है, जिसे हम आजकल संत साहित्य कहने लगे हैं। वह वस्तुतः निर्गुण भक्ति मार्ग का साहित्य है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति मार्ग को रामानंद ले आए और सौभाग्य से उन्हें कबीर जैसा शिष्य मिल गया था। कबीर के अनुयायियों में यह दोहा प्रचलित है, भक्ति द्रामीण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्त दीप नवखंड। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है, उसमें भक्ति के मुख से यह कहलवाया गया है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में बिहार करती हुई, अंत में गुर्जर देश में आकर जीर्ण हो गई। फिर घोर कलिकाल में पाखंडियों ने मेरा सिर खंड खंड कर दिया और मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल होकर छीण हो गई। अंत में वृंदावन में मुझे नया रूप प्राप्त हुआ और यहाँ आकर युवावस्था में मनोरम रूप प्राप्त करने में समर्थ हो सकी। उत्पन्ना द्राविडे चाहम वृद्धि कर्णाटकी गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कबीर पंथियों में प्रचलित दोहे से श्लोक का इतना ही साम्य है कि भक्ति द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई थी और वहां से क्रमशः उत्तर दिशा को गई, परंतु द्राविड़ देश में जो भक्ति उत्पन्न हुई थी उसकी वही रूप नहीं है जो कबीर आदि निर्गुण संतों में प्राप्त होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? निसंदेह यहाँ कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां थी जिनके कारण द्रविड़ देश की उत्पन्न भक्ति ने उत्तर में आकर यह रूप ग्रहण किया। साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि उस भक्ति ने उत्तर भारत के दो श्रेणी के भक्तों में दो रूप ग्रहण किए। जो भक्त ऊंची जातियों से आए थे उनमें उसने जो रूप ग्रहण किया वह परंपरा प्रचलित विश्वासों के प्रति उतने तीव्र और आक्रामक रूप में नहीं प्रकट हुई। जिस आक्रामक रूप में वह उन भक्तों में प्रकट हुई जो समाज की निचली श्रेणी की जातियों के भीतर से आए थे। प्रथम श्रेणी के भक्तों ने समाज में प्रचलित शास्त्रीय आचार विचार, व्रत उपवास, ऊंच नीच की मर्यादा को स्वीकार कर लिया। उनका असंतोष दूसरी श्रेणी के भक्तों के असंतोष से बिल्कुल भिन्न था। वे सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट नहीं थे। ये लोगों के भोगपरक भगवत विमुख आचरण से असंतुष्ट थे। श्रुति और श्रुति परंपरा में आने वाले धर्म ग्रंथों को कर्तव्य अकर्तव्य के नियमों के लिए उन्होंने अविसंवादी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था। तुलसीदास, सूरदास आदि सगुण मार्गी भक्तों की वाणियों में गणिका अजामिल के तरने की चर्चा बार बार आती है। पौराणिक विश्वास के अनुसार ये लोग उच्च कोटि का जीवन यापन करने वाले नहीं थे, लेकिन भाव कुभाव अनख आलसहु किसी प्रकार इनके मुख से भगवान के नाम निकल गए और वे तर गए। इन नामों का भक्ति साहित्य में आना भक्तों के अत्यधिक वैयक्तिक दृष्टिकोण का परिचायक है, जिसमें केवल साधु उद्देश्य पर ही जोर दिया गया है। उस उद्देश्य का फल क्या होगा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर निचली श्रेणी से आए हुए भक्तों में सामाजिक अवस्था के प्रति तीव्र असंतोष का भाव व्यक्त होता है। यद्यपि उनमें भी वैयक्तिक साधु बुद्धि भी पर कम जोर नहीं दिया गया, इतना तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष में दो प्रकार का अत्यंत स्पष्ट सामाजिक स्तर था। एक में शास्त्र के पठन पाठन की व्यवस्था थी और उनकी आदर्श पर संगठित सामाजिक व्यवस्था के प्रति सहानुभूति थी, और दूसरे में सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष का भाव था। यह अवस्था एक दिन की उपज नहीं थी, दीर्घ काल तक इसको खुराक मिलती रही। वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा इस देश में बहुत पहले से हो चुकी थी। नाना उतार चढ़ावों के रहते वेद अंत तक भारतीय जनता के परम आदर्श श्रद्धा के पात्र बनी रहे। जैसा कि पहले कहा गया है, सन ईस्वी के छठी सातवीं शताब्दी के आसपास एक विशेष प्रवृत्ति का परिचय इस देश में पाया जाता है। बहुत से धर्म मतों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें वेद बाह्य कह दिया जाता है। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। बाद में किसी संप्रदाय को अवैधिक कह देना उसे लोक दृष्टि में हेय बनाने का साधन बन गया। लेकिन एक और प्रवृत्ति भी उन दिनों उतने ही उग्र रूप में पाई जाती है, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है। इसमें वेदों को ही तुच्छ बताने की प्रवृत्ति है। सातवीं आठवीं शताब्दी के तांत्रिकों में वेद विहित आचार को हेय घोषित करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र है। बताया गया है कि आचार सात प्रकार के होते हैं। पहला वेदाचार सबसे हेय आचार है, जिसमें वैदिक काम्य कर्म यज्ञ यागादि विहित है। दूसरा वैष्णवाचार, जिसमें निरामिष भोजन और पवित्र भाव व्रत है, उपवास ब्रह्मचर्य और भजन पूजन का विधान है। इससे थोड़ा अच्छा शैवाचार है, जिसमें यम नियम ध्यान धारणा समाधि और शिव शक्ति की उपासना का विधान है। इन तीनों आचारों में श्रेष्ठ है दक्षिणाचार, जिसमें उपयुक्त तीनों आचारों के नियमों का पालन करते हुए रात्रि काल में भंग आदि मादक वस्तुओं का सेवन और इष्ट मंत्रों का जप विहित है। लेकिन यद्यपि वैदिक से वैष्णव उससे शैव और शैव से दक्षिणाचार्य श्रेष्ठ हैं, तथापि ये सब पशु भाव की ही साधनाएं हैं। वीर भाव के साधक के लिए पांचवा आचार वामाचार है, जिसमें आत्मा की वामा अर्थात शक्ति के रूप में कल्पना करके साधना विहित है। उससे श्रेष्ठ आचार है सिद्धांताचार्य। सिद्धांताचार जिसमें मन को अधिकाधिक शुद्ध करके यह वृत्ति उत्पन्न करने का उद्देश्य है कि संसार में प्रत्येक वस्तु शोधन से शुद्ध हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर ढेले तक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परम शिव से भिन्न हो। पर इनमें सबसे श्रेष्ठ है कौलाचार, जिसमें कोई भी नियम नहीं है। स्पष्ट ही इस प्रकार के सोचने वाले वैदिक आचार मानते हैं। कारण क्या है? जिन दिनों निर्गुण भक्ति साहित्य का बीजारोपण हुआ, उन दिनों अनेक उथल पुथल के बाद भारतीय जनता का स्तर भी प्रायः स्थिर और दृढ़ हो चुका था। मोटे तौर पर हम सन ईस्वी की 14वीं शताब्दी में इस नवीन साधना का बीजारंभ मान सकते हैं। इसके पहले के 200-300 वर्षों में भारतीय धर्म साधना की क्षेत्र काफी उथल पुथल हुई। यद्यपि मुसलमानों का प्रवेश इस देश की एक भूभाग में 7वीं-8वीं शताब्दी में ही हो चुका था, तथापि प्रभावशाली मुस्लिम आक्रमण 10वीं शताब्दी के बाद शुरू हुए। यह बड़ा विकट काल था। एक ओर मुसलमान लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे और दूसरी ओर बौद्ध साधना क्रमशः मंत्र तंत्र और टोने टटके की ओर अग्रसर हो रही थी। सन ईसवी की 10वीं शताब्दी में ब्राह्मण धर्म संपूर्ण रूप से अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका था, फिर भी बौद्धों, शाक्तों और शैवों का एक बड़ा भारी समुदाय ऐसा था जो ब्राह्मण और वेद की प्रधानता को नहीं मानता था। यद्यपि इनके परवर्ती अनुयायियों ने बहुत प्रयत्न किया है उनके मार्ग को श्रुति सम्मत मान लिया जाए, परंतु यह सत्य है कि अनेक शैव और शाक्त समुदाय ऐसे थे जो वेदाचार को अत्यंत निम्न कोटि का आचार मानते थे और ब्राह्मण प्राधान्य को एकदम नहीं स्वीकार करते थे। ऊपर हमने यह दिखाया है कि 10वीं शताब्दी के पहले उत्तर भारत में पाशुपत मत कितना प्रबल था। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इस मत का 12 बार उल्लेख किया है। बाणभट्ट के ग्रंथों में इसकी चर्चा आती है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों कट्टर वेद मार्गी इस संप्रदाय को वेद बाह्य मानते थे। शंकराचार्य ने इनके धर्म विश्वास को वेद बाह्येश्वर कल्पना कहा है। शंकराचार्य ने इनके धर्म विश्वास को वेद बाह्येश्वर कल्पना कहा है। 10वीं शताब्दी के आसपास ब्राह्मण मत क्रमशः प्रबल होता गया और इस्लाम के आने से एक ऐसे सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हुआ जिससे सारा देश दो प्रधान प्रतिस्पर्धी धार्मिक दलों में विभक्त हो गया। अपने को या तो हिंदू कहना पड़ता था या मुसलमान। किनारे पर पड़े हुए अन्य संप्रदायों को दोनों में से किसी एक को चुन लेना पड़ा। पूर्वी बंगाल के वेद बाह्य संप्रदायों के ध्वंसावशेष कई धार्मिक संप्रदाय ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों को अपना त्राणकर्ता समझा था। ये समूह रूप में मुसलमान हो गए। पंजाब में भी नाथों, निरंजनों और पाशुपतों की अनेक शाखाएं मुसलमान हो गईं। गोरखनाथ के समय ऐसे अनेक शैव, बौद्ध और शाक्त संप्रदाय थे जो न तो हिंदू थे और न मुसलमान। जो शैव और शाक्त मार्गी वेदानुयायी थे, वे बृहत्तर ब्राह्मण प्रधान हिंदू समाज में मिल गए और निरंतर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। यह प्रयत्न अब भी जारी है। गोरखनाथ के संप्रदाय में अनेक बौद्ध, शैव, शाक्त संप्रदाय अंतर्भूत हुए, परंतु इस संप्रदाय के भी बहुतेरे गृहस्थ मुसलमान हो गए। इनकी संख्या नितांत नगण्य नहीं है। सन 1921 ईस्वी की जनगणना के अनुसार पंजाब में मुसलमान योगियों की संख्या 31,000 से ऊपर थी। इस प्रकार बहुत सी जातियां बृहत्तर हिंदू समाज में स्थान पाने में असफल होने के कारण मुसलमान हो गए। मुसलमानों के आने के कारण हिंदू समाज में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में हुई। उनकी जाति प्रथा अधिकाधिक कसी जाने लगी। छूत का भय और वर्ण संकरता की आशंका ने समूचे समाज को ग्रस्त लिया। प्रथम बार भारतीय समाज को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो उसकी जानी हुई नहीं थी। अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जाति की रचना कर लिया करते थे। इस प्रकार यद्यपि सैकड़ों जातियां और उपजातियां बनती जा रही थी, तथापि वर्णाश्रम व्यवस्था किसी न किसी प्रकार चलती जा रही थी। अब सामने एक सुसंगठित समाज था जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को अपने अंदर समान आसन देने की प्रतिज्ञा कर चुका था। एक बार कोई भी व्यक्ति उसके विषय धर्म मत को यदि स्वीकार कर ले तो इस्लाम भेदभाव को भूल जाता था। वह राजा से रंग और ब्राह्मण से चांडाल तक को सबको धर्मोपासना का समान अधिकार देने को राजी था। समाज का दंडित व्यक्ति अब असहाय नहीं था। इच्छा करते हैं कि वह एक सुसंगठित समाज का सहारा पा सकता था। ऐसे ही समय में दक्षिण से भक्ति का आगमन हुआ जो बिजली की चमक के समान इस विशाल देश के इस कोने से उस कोने तक फैल गई। इसने दो रूपों में अपने आप को प्रकाशित किया। यही वे दो धाराएं हैं जिन्हें निर्गुण धारा और सगुण धारा नाम दे दिया गया। इन दोनों साधनाओं ने जो दो पूर्ववर्ती धर्म मतों को केंद्र बनाकर ही अपने को आपको प्रकट किया। सगुण उपासना ने पौराणिक अवतारों को केंद्र बनाया और निर्गुण उपासना ने योगियों अर्थात नाथपंथी साधकों के निर्गुण परम ब्रह्म को। पहली साधना ने हिंदू जाति के बाह्याचार की शुष्कता को आंतरिक प्रेम में सींच कर रसमय बनाया और दूसरी साधना ने बाह्याचार की शुष्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया। एक ने समझौते का रास्ता लिया और दूसरे ने विद्रोह का। एक ने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरे ने अनुभव का। एक ने श्रद्धा को पथ प्रदर्शक बनाया, दूसरे ने ज्ञान को। एक ने सगुण भगवान को अपनाया, दूसरे ने निर्गुण भगवान को। पर प्रेम दोनों का ही मार्ग था। सुखा ज्ञान दोनों को ही अप्रिय था। केवल बाह्याचार दोनों में से किसी को सम्मत नहीं था। आंतरिक प्रेम निवेदन दोनों का इष्ट था। अहित भक्ति दोनों की कामी थी। आत्मसमर्पण दोनों के साधन थे। भगवान की लीला में दोनों ही विश्वास करते थे। दोनों ही का अनुभव था कि भगवान लीला के लिए इस जागतिक प्रपंच को संभाले हुए हैं। पर प्रधान भेद यह था कि सगुण भाव से भजन करने वाले भक्त भगवान को अलग रखकर देखने में रस पाते थे, जबकि निर्गुण भाव से भजन करने वाले भक्त अपने आप में रमे हुए भगवान को ही परम काम्य मानते थे। उन दिनों भारतवर्ष के शास्त्रज्ञ विद्वान निबंध रचना में जुटे हुए थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा को शिरोधार्य कर लिया था, अर्थात सब कुछ मानकर सबके प्रति आदर भाव बनाए रखकर अपना रास्ता निकाल लेना। सगुण भाव से भजन करने वाले भक्त लोग भी संपूर्ण रूप से इसी पुरानी परंपरा से प्राप्त मनोभाव के पोषक थे। वे समस्त शास्त्रों और मुनिजनों को अकुंठ चित्त से अपना नेता मानकर उनके वाक्यों की संगति प्रेम पक्ष में लगाने लगे। इसके लिए उन्हें मामूली परिश्रम नहीं करना पड़ा। समस्त शास्त्रों के प्रेम भक्ति मूलक अर्थ करके समय उन्हें नाना अधिकारियों नाना भजन शैलियों की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी। नाना अवस्थाओं और अवसरों की कल्पना करनी पड़ी और शास्त्र ग्रंथों के तारतम्य की भी कल्पना करनी पड़ी। सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकृति के प्रसार विस्तार से अनंत प्रकृति के भक्तों और अनंत प्रणाली के भजनों की कल्पना करनी पड़ी। सबको उन्होंने उचित मर्यादा दी और यद्यपि अंत तक चलकर उन्हें भागवत पुराण को ही सर्व प्रधान प्रमाण ग्रंथ मानना पड़ा था, अब अपने लंबे इतिहास में इन्होंने कभी भी किसी शास्त्र के संबंध में अवज्ञा या अवहेलना का भाव नहीं दिखाया। इनकी दृष्टि बराबर भगवान के परम प्रेममय रूप और मनोहारिणी लीला पर निबद्ध रही। इन्होंने बड़े धैर्य के साथ समस्त शास्त्रों की संगति लगाई। सगुण भाव के भक्तों की महिमा उनके असीम धैर्य और अध्यवसाय में है, पर निर्गुण श्रेणी के भक्तों की महिमा उनके उत्कट साहस में है। एक ने सब कुछ स्वीकार करने का अद्भुत धैर्य दिखाया, दूसरे ने सब कुछ को छोड़ देने का असीम साहस। लेकिन केवल भगवत प्रेम या पांडित्य ही इस युग के विचार स्रोत का रूप नहीं दे रहे थे। कम से कम हिंदी के भक्ति साहित्य को काव्य के नियमों और प्रभावों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अलंकार शास्त्र और काव्यगत रूढ़ियों से उसे एकदम मुक्त नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी वही चीज नहीं है जो संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के पूर्ववर्ती साहित्य हैं। विशेषताएं बहुत हैं और हमें उन्हें सावधानी से जांचना चाहिए। यह स्मरण किया जा सकता है कि अलंकार शास्त्र में देवादि विषयक रति को भाव कहते हैं। जिन अलंकारिकों ने ऐसा कहा था उनका तात्पर्य यह था कि पुरुष का शरीर स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति जो प्रेम होता है उसमें एक स्थायित्व तो होता है, जबकि किसी राजा या देवता संबंधी प्रेम में भावावेश की प्रधानता होती है, वह अन्यान संचारी भावों की तरह बदलता रहता है। परंतु यह बात ठीक नहीं कही जा सकती। भगवत विश्वक प्रेम को इस विधान के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यह कहना कि भगवत विश्वक प्रेम में निर्वेद भाव की प्रधानता रहती है, अर्थात उसमें जगत के प्रति उदासीन होने की वृत्ति ही प्रबल होती है, केवल जड़ जगत से मानसिक संबंध ही प्रधान मान लेना है। इस कथन का स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य के साथ जड़ जगत के संबंध के ही स्थायित्व पर रस का निरूपण होगा, क्योंकि अगर ऐसा न माना जाता तो शांत रस में जगत के साथ जो निर्वेदात्मक संबंध है उसे प्रधानता न देकर भगवत विषय प्रेम को प्रधानता दी जाती। जो लोग शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद को न कहकर श्रम को कहना चाहते हैं, वे वस्तुतः इसी रास्ते सोचते हैं। इस प्रसंग में बारंबार जड़ जगत शब्द का उल्लेख किया गया है। यह शब्द भक्ति शास्त्रियों का पारिभाषिक शब्द है। इस प्रसंग का विचार करते समय याद रखना चाहिए कि भारतीय दर्शन के मत से शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी जड़ प्रकृति के विकार हैं। इसलिए चित्त विषयक प्रेम केवल भगवान से संबंध रखता है। इस परम प्रेम के प्राप्त होने पर भक्ति शास्त्रियों का दावा है कि अन्यान जड़ोन्मुख प्रेम शिथिल और अकृतकार्य हो जाता है। इसलिए भगवत प्रेम न तो इंद्रिय ग्राह्य है, मनोगम्य और न बुद्धि साध्य, वह अनुभव द्वारा ही आस्वाद्य है। जब इस रस का साक्षात्कार होता है तो अपना कुछ भी नहीं रह जाता। इंद्रियों द्वारा किया गया कर्म हो या मन बुद्धि स्वभाव द्वारा, वह समस्त सच्चिदानंद नारायण में जाकर विश्रमित होता है। भागवत के 11:2-36 इसलिए कहा गया है, कायिन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मा वानु स्थित स्वभावात्। कायिन वाचा मनसे इंद्रिया वा बुद्ध्यात्मना मानु स्थित स्वभावात् करो मिद्यत सकलम परस्मे नारायण यति संपर्तयते। पर निर्गुण भाव से भजन करने वाले भक्तों की वाणियों के अध्ययन के लिए अब तक इनके अध्ययन के लिए जो सामग्री व्यवहृत होती रही है वह पर्याप्त नहीं है। हमें अभी तक ठीक ठीक मालूम नहीं है कि किस प्रकार की सामाजिक अवस्थाओं के भीतर भक्ति का आंदोलन शुरू हुआ था। इस बात के जानने का सबसे बड़ा साधन लोकगीत लोक कथानक और लोकोक्तियां हैं और उतने ही महत्वपूर्ण विषय हैं। भिन्न भिन्न जातियों और संप्रदायों के राजनीति, पूजा पद्धति और अनुष्ठानों तथा आचारों की जानकारी, पर दुर्भाग्यवश हमारे पास ये साधन बहुत ही कम है। भक्ति साहित्य के पढ़ने वाले पाठक को जो बात सबसे पहले आकृष्ट करती है, विशेषकर निर्गुण भक्ति की अध्येता को, वह यह है कि उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक को अपने ज्ञान का गर्व था, दूसरे को अपने अज्ञान का भरोसा। एक के लिए पिंड ब्रह्मांड था, दूसरे के लिए ब्रह्मांड पिंड। एक का भरोसा अपने पर था, दूसरे का राम पर। एक प्रेम का दुर्बल समझता था, दूसरा ज्ञान को कठोर। एक योगी था, दूसरा भक्त। इन दो धाराओं का अद्भुत मिलन ही निर्गुण धारा का वह साहित्य है, जिसमें एक ओर कभी न झुकने वाला अक्खड़पन और दूसरी तरफ घर फूंक मस्ती वाला थक्कड़पन। यह साहित्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसमें सहज ज्ञान और वज्र ज्ञान की तथा शैव तथा तंत्र मत की अनेक साधनाएं और चिंताएं आ गई हैं, तथा दक्षिण के भक्ति प्रचारक आचार्यों के शिक्षा के द्वारा वैदांतिक और अन्य शास्त्रीय चिंताएं भी। मध्यकाल के निर्गुण कवियों के साहित्य में आने वाले सहज, शून्य, निरंजन, नाद, बिंदु आदि बहुतेरे शब्द जो इस साहित्य के मर्मस्थल के पहरेदार हैं, तब तक समझ में नहीं आ सकते जब तक पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन गंभीरता पूर्वक न किया जाए। अपनी कबीर नामक पुस्तक में मैंने इन शब्दों के मनोरंजक इतिहास की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। एक मनोरंजक उदाहरण दे रहा हूँ। यह सभी को मालूम है कि कबीर और अन्य निर्गुणिया संतों के साहित्य में खसम शब्द की बार बार चर्चा आती है। साधारणतः इसका अर्थ पति या निकृष्ट पति किया गया है। खसम शब्द से मिलता जुलता एक शब्द अरबी भाषा का है। इस शब्द के साथ समता देखकर ही खसम का अर्थ पति किया जाता है। कबीर दास ने इसका प्रयोग इस लहजे में किया है कि उससे ध्वनि निकलती है कि खसम उनकी दृष्टि में निकृष्ट पति है, परंतु साधकों की पुस्तकों में यह शब्द एक विशेष अवस्था के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। खसम भाव अर्थात आकाश के समान भाव। समाधि की एक विशेष अवस्था को योगी लोग भी लग्नोपम अवस्था कहा करते हैं। खसम और गगनोपम एक ही बात है। अवधूत गीता में इस गगनोपमा अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह मन के उस अवस्था को कहते हैं जिसमें द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, सत्य और असत्य, देवता और देवलोक आदि कुछ भी प्रतीत नहीं होते। जो माया प्रपंच के ऊपर है, जो दंभादि व्यापार के अतीत है, जो सत्य और असत्य के परे है और जो ज्ञानारूपी अमृत पान का परिणाम है। टीकाकारों ने खास सम का अर्थ प्रभा स्वर तुल्य भूता किया है। इस साहित्य में वह भावाभाव विनिर्मुक्त अवस्था का वाचक हो गया है। निर्गुण साधकों के साहित्य में उसका अर्थ और भी बदल गया। गगनोपमा अवस्था योगियों की दुर्लभ सहजा अवस्था के आसन से यहाँ नीचे उतर आई है। कबीर दास प्राणायाम प्रभृति शरीर प्रयत्नों से साधित समाधि का बहुत आदर करते नहीं जान पड़ते। जो सहजा अवस्था शरीर प्रयत्नों से साधी जाती है वह असली है और शरीर के साथ उसका विलय हो जाता है। यही कारण है कि कबीर दास इस प्रकार की खास समावस्था को सामयिक आनंद ही मानते हैं। मूल वस्तु तो भक्ति है, जिसके प्राप्त होने पर भक्त को नाक कान रोधने की जरूरत ही नहीं होती, कंठा और मुद्रा धारण की आवश्यकता ही नहीं होती, वह सहज समाधि का अधिकारी होता है। सहज समाधि जिसमें कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, जो कुछ कहो सो पूजा ही है। अब तक पूर्ववर्ती साहित्य के साथ मिलाकर न देखने के कारण पंडित लोग खसन शब्द की इस महान अर्थ को भूलते रहे हैं। मैंने उल्लिखित कबीर पुस्तक में विस्तृत भाव से इस शब्द के पूर्वा पर अर्थ का विचार किया है और इसलिए मैं यह कहने का साहस कह सकता हूँ कि कबीरदास खसन शब्द का व्यवहार करते समय उसके अरबी अर्थ के अतिरिक्त भारतीय अर्थ को भी बराबर ध्यान में रखते हैं। मेरा विश्वास है कि नेपाल और हिमालय की तराइयों में जहाँ जहाँ योग मार्ग का प्रबल प्रचार था, वहाँ के लोकगीत और लोक कथानकों में ऐसे अनेक रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है।